रेडियो मानव रचना 107.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और आप है मेरे साथ यानी दीक्षा के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जिन्हें भगवान का रूप कहा जाता है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे। जब घर में ये बच्चे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी शैतानी करते हैं लेकिन सबका मन बहलाते हैं, और जब घर में नहीं होते हैं तो घर सुनसान लगता है। लेकिन इन बच्चों में अक्सर हम कुछ ना कुछ नया और अलग देखते रहते हैं, और वो नया और अलग क्या होता है ये जानना भी बहुत जरूरी है। हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा कुछ अलग हो। बहुत से बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं तो कोई गाना गाने में अच्छे होते हैं, कोई काम बहुत अच्छे तरीके से अपना निपटा लेता है तो कोई बोलता बहुत ज्यादा है। हर बच्चे में अपनी खासियत होती है, लेकिन इस खासियत को पहचाना कैसे जाए, यही है आज का टॉपिक। छोटे छोटे बच्चों में बड़ी बड़ी खासियत, और इन खासियत के बारे में जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है बहुत ही खास मेहमान, मिसेज इकविंदर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम।
धन्यवाद।
साथ ही कविता जी हैं जो कि टीचर हैं। कविता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।
धन्यवाद।
लीना जी हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो मौजूद हैं हमारी एक और एक्सपर्ट के तौर पर। लीना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।
धन्यवाद।
और साथ ही रेनू जी और ज्योति जी भी जो भी टीचर्स हैं हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो में मौजूद हैं।
थैंक यू।
तो आप सबसे पहला और सबसे छोटा सा सवाल मैं जो जानना चाहती हूँ, बच्चों के साथ आप रहते हैं, आप सभी टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो इकविंदर जी सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी बच्चों के बारे में क्या बताना चाहेंगी आप।
दीक्षा आपने इतना सुंदर इतना प्यारा सा टॉपिक हमारे समक्ष रखा है दैट इसके बारे में इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू डिफाइन इट इन जस्ट वन लाइन, बट दैट वन लाइन जो मुझे अभी याद आ रही है वो ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही खास पोयम है जो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है। वो शुरू होती है लो आई बिहोल्ड अ रेनबो, एंड द लास्ट लाइन उसकी खत्म होती है सेकेंड बट लास्ट लाइन इट सेज चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब ये रेनबो को अगर आप शुरू करते हैं, ये एक जो जीवन शुरू होता है एक बच्चे का, एक रेनबो की तरह शुरू होता है। जब वो इस दुनिया में आता है, देखता है आसपास पूरी दिशाओं में वो पनपता है, बड़ा होता है, कितने लोग उसके आसपास होते हैं, और एक जो हम कहते हैं एक्सपोजर, एक बच्चे का एक्सपोजर दुनिया में आकर के ही एक ऐसा होता है। अब हमने जो देखना है, जो पेरेंट देखता है सबसे पहले, एक सुंदर सा छोटा सा फूल पनपता है, बड़ा होता है, खिलखिलाता है, पेटल्स बढ़ते हैं, यस। अब वो जब पनपता है, बड़ा होता है, तो वो चारों ओर एक तरह का एक पहली एनवायरनमेंट जो हमको डिफाइन करते हैं, ये एक पहला एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है घर में। अब बच्चा जो देखता है वो बड़ा होता है, एंड हर एक चीज़ जो एक हम लोग एक हर एक चीज़ एक स्टिमुलस बन जाती है उसके लिए कि वो स्टिमुलस ऑडियो हो, विजुअल हो, वो देखता है, ही स्पीक्स, ही लर्न्स टू स्पीक, ही सीज, तो हर एक चीज़ जो है एक बड़ा डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है एक बच्चे का। इसी डेवलपमेंटल प्रोसेस में हम लोग जो एक हैं हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं हम एज पेरेंट्स एज एजुकेशनिस्ट, कि उसमें देखते हैं कि बच्चा जब बड़ा है पनप रहा है उसमें हम क्या देख रहे हैं, किस अनोखे तरीके से वो बड़ा हो रहा है और किस अलग तरीके से वो बड़ा हो रहा है। देखिए एक स्पेशल इंडिविजुअल, एक खास डिज़ाइनर जिसे कहते हैं भगवान ने बना करके भेजा है, उसमें हमने देखना है कि हमने क्या क्या ऐसी चीज़ है जो हम उसको देखते हैं पनपते हुए, हमारा जो ध्यान है उसकी तरफ जाता है, और एक बहुत ही एक सुंदरता का और एक सेटिस्फैक्शन का आभास होता है जब आप एक बच्चे को बड़ा होते हुए देखते हैं।
जी बिल्कुल, एक छोटा सा बच्चा जब आपकी दुनिया में आता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है, एक फूल की तरह खिलता है, और उस फूल में बहुत सी खासियत होती है। अब उसे पहचाने कैसे, इस विषय पर आज हम बात करेंगे, और हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान हैं। कविता जी आपसे जानना चाहूंगी बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे।
जैसा कि मेरी साथी ने बताया अभी कि बच्चे बिल्कुल फूल की तरह हैं, जो जब इस दुनिया में आते हैं तो सतरंगी रोशनी फैलाते हैं, सतरंगे रंग चारों ओर फैला देते हैं। बिल्कुल सही है, एज अ टीचर जब मैं अपनी क्लास में जाती हूँ बच्चों को देखती हूँ तो सच में ऐसा लगता है कि रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, और जैसे सुबह जब आप क्लास में जाते हैं और जो उनके खिले हुए चेहरे आपको दिखाई देते हैं, चाहे आप घर से कितना भी तनाव में निकले हों, पर उनको उनके उन खिले हुए चेहरों को देखकर आप समझ लीजिए कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है, ये बिल्कुल पक्की बात है। और रही बात कि हम बच्चों को देखकर उनकी प्रतिभा को कैसे पहचानते हैं, हमारे पास हर तरह के अलग अलग स्तर के बच्चे हैं, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है जैसा अभी आपने कहा, कोई बोलता बहुत ज़्यादा है, तो शायद मुझे लगता है कि एक अध्यापिका होने के नाते बच्चों की इन्हीं कमियों में अगर उनकी अच्छाइयों और खूबियों को ढूंढा जाए, और जो कि हम करते भी हैं, तो मुझे लगता है हम उनको निखार कर संवार कर ऊँचाइयों तक पहुँचा सकते हैं।
जी तो चलिए लीना जी आपसे जानना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगी बच्चों के बारे में।
भगवान ने हर एक बच्चे को एक अलग क्वालिटी के साथ भेजा है, हर किसी बच्चे में एक हिडन टैलेंट है और वही एज अ टीचर हमें ढूंढने की ज़रूरत है। पेरेंट अपना रोल करता है, बट व्हेन द चाइल्ड कम्स टू स्कूल तो वो टीचर का रोल होता है कि उसको वो कैसे वो हिडन टैलेंट को निकाले। जैसे हर एक बच्चा जो है, वो कोई बच्चे होते हैं जो बैठते नहीं हैं, घूमते रहते हैं इधर से उधर, लेकिन वो बच्चा ऐसा नहीं है कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चा सुन नहीं रहा है, वो बैठा है, वो घूम रहा है, लेकिन वो उसका सीखने का तरीका है कि वो घूम घूम के भी उस बात को सीख रहा है। और ये एज अ टीचर हमें पता होना चाहिए कि वो बच्चा किस तरह से लर्न कर रहा है। अगर वो घूम घूम के सीख रहा है तो हमें उसको उसी तरह से उसकी उस क्वालिटी को उभारना है। अगर उसको कोई बच्चा है जो पजल्स खेलता है तो वो पजल्स अच्छे से कर रहा है, तो इसका मतलब उसके उसकी रुचि उसके अंदर है। तो हमें एज टीचर्स पेरेंट्स को जो बच्चे की रुचि है वो पेरेंट्स तक भी वो बात पहुँचानी चाहिए कि ये बच्चे की रुचि है, ताकि वो और उस बच्चे पर वर्क कर सके और उसकी जो इनबिल्ट उसका जो हिडन टैलेंट है उसको और इम्प्रूव कर सके।
जी बिल्कुल, यानी बच्चे की खासियत को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेनू जी, आपसे जानना चाहूंगी बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे।
ऑनर टीचर्स आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि बच्चों के बारे में कि ये फ्लावर्स की तरह है, कि दे ब्लूम लाइक, तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि आजकल एज ए पेरेंट मैं कुछ कहना चाहूंगी कि आजकल बच्चों के लिए पेरेंट्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। एंड उन बच्चों का फ्यूचर जो कभी हम लोगों को लगता था कि हम फ्यूचर अच्छा फ्यूचर में ये करें, वो आईपैड एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में उनका जो बचपन है वो आके कहीं ना कहीं दब गया है। सो मुझे यहाँ लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों को जो उनका लाइक टाइम, आई नो दैट कि पेरेंट्स वर्किंग है, मदर्स आर वर्किंग, बट मदर्स को अकॉर्डिंगली लाइक जितना भी टाइम है, वैल्यूएबल जो भी टाइम है, अगर वो बच्चों को दें तो मुझे लगता है कि उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इन सब की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज बच्चों के लिए मदर्स दे आर जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कि जो उनको खुशी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी एंड एज ए काउंसलर, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए काउंसलर। सो एज ए काउंसलर मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो गैप है, उस गैप को भरने के लिए हमें स्पेशली फॉर मदर्स, मदर्स को कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इतना टाइम देना चाहिए ताकि बच्चे जो काफ़ी आपने आजकल सुना होगा कि बच्चे दे आर वेरी एग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव वी आर वाई, बिकॉज अगर मदर्स नहीं समझेंगी बच्चों की प्रॉब्लम्स को तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी उनको समझ पाता है। एंड सेम फॉर द टीचर्स, टीचर्स आर द सेकेंड पेरेंट टू द चाइल्ड, तो अगर टीचर्स भी पेरेंट की तरह ही बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझेंगी तो आई थिंक सो कि हमारे इंडिया में देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन, वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी।
जी,
सो देर इज अ गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड लाइक चिल्ड्रन।
जी जी, ज्योति जी बहुत सारे अलग अलग व्यूज आ रहे हैं बच्चों के बारे में, बहुत कुछ सब बता रहे हैं। कोई फूल कह रहा है तो कोई कह रहा है कि बच्चे बहुत शैतान हैं, उनको समझना चाहिए, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको समझना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे?
माई व्यू इज़ दैट कि सबने अपने अपने स्टाइल से बोला, सबने अपने बात बोली है कि यस, बच्चे ब्लूमिंग हैं, बच्चे फूलों की तरह हैं, और उन फूलों को आगे तक कैसे लेके जाना है, उनको निखारना कैसे, ये टीचर्स के हाथ में भी है, पेरेंट्स के हाथ में भी है। और टीचर्स और पेरेंट्स का जब तक अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, पीटीएम्स कंडक्ट होती है, पीटीएम्स को कंडक्ट करना टीचर्स की ड्यूटी तो है, लेकिन क्या पेरेंट्स उतना वैल्यूएबल टाइम दे पा रहे हैं, क्या टीचर्स उनको फॉलो अप कर रहे हैं, और फॉलो अप करने का जो पैटर्न है वो ठीक ठीक है। एक प्रिंसिपल बोल देता है कि बेटा टीचर्स को कि क्या आपने उनको फॉलोअप कर, यस टीचर्स ड्यूटी अपनी पूरी करते हैं, लेकिन पेरेंट्स, जैसे इन्होंने बोला कि पेरेंट्स के पास उतना टाइम नहीं होता, मैंने खुद नोटिस किया बिकॉज आई एम ऑल्सो अ प्रिंसिपल, इतना टाइम नहीं होता। वो कहते हैं कि हम ब्रांड कॉन्शियस हैं, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ इस टॉपिक से, टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि उनके पास MNCs में जॉब करें, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वो वर्कलोड इतना ज़्यादा इम्पोज कर देते हैं कि सॉरी आई डोंट हैव अ टाइम। वो बच्चा छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इतना एग्रेसिव हो जाता है, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और लिटरली मैं आपको एक छोटी सी बात, सॉरी मेरे आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा सुनने के लिए, कहता है कि मैडम मैं ये 100 coins, छोटे छोटे coins लेकर आया मेरे पास, आप प्लीज़ मेरी मम्मी से बात करा दो इस बात को लेकर कि अब मेरी मम्मी मेरे लिए पैसे ही तो कमा रही हैं, ये पैसे लेके मेरी फ़ोन पे बात करा दो। सीरियसली आई एम टेलिंग यू द रियलिटी ऑफ द फैक्ट थिंक दैट दैट गाय केम टू मी मम्मा से मेरे अब मेरे पास 100 बग्स हो गए हैं, अब ये 100 बग्स से मेरी मम्मा मुझे अपना वैल्यूएबल टाइम दे सकेगी. आई एम एग्री विद ऑल ऑफ यू, दे आर द ब्लूमिंग स्टार्स, दे आर द फ्यूचर ऑफ आर नेशन, बट दे पेरेंट्स डजंट हैव अ टाइम टू गिव द वैल्यूएबल टाइम. हम बात करते हैं कि येस वो अभी इन्होंने भी बोला कि विलियम वर्ड्स रेनबो की बात, वो पास्ट की बात थी. क्या आज के पेरेंट्स के पास टाइम है?
यानी बच्चों में टैलेंट है और उस टैलेंट को निखारने के लिए पेरेंट्स के पास अब वक्त नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को अपना करियर बनाना है, अपना फ्यूचर बनाना है, और बच्चे के लिए ऑफ कोर्स वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वक्त की कमी है. इस बात से भी कहीं ना कहीं हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, इस बात को भी समझना चाहिए. नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे, कभी शैतान तो कभी बहुत सीधे साधे, और इन छोटे छोटे बच्चों में बहुत बड़े बड़े टैलेंट होते हैं. लेकिन आखिर इस टैलेंट को पहचाना कैसे जाए? बहुत से बच्चों से पेरेंट्स को अक्सर ये शिकायत होती है कि वो पढ़ाई नहीं करते, लेकिन क्या हम जानते हैं कि बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा तो उसके पीछे वजह क्या है? क्या उसका दिमाग किसी और चीज में लग रहा है? क्या वो बच्चा किसी और चीज में इतना टैलेंटेड है कि वो उसी चीज में खोया हुआ है? क्या हम उन बच्चों के इस टैलेंट को समझने की कोशिश करते हैं? इसी विषय पर आज हम बात करें हैं, और फिलहाल अब मैं जानना चाहूंगी एकविंदर सिंह जी से. एकविंदर जी, क्या कहना चाहेंगे, बच्चे के छुपे हुए टैलेंट को, उसके हिडन टैलेंट को कैसे पहचाना जाए?
देखिए दीक्षा, एक बात तो बहुत लाजमी हमको एज एजुकेशन समझ लेनी चाहिए, दैट एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद अ लेटेंट टैलेंट, नॉट जस्ट वन टैलेंट बट मेनी मेनी फैसेटेड टैलेंट्स. एंड एज वी स्ट्रांगली बिलीव टुडे इज द डे ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. अब एक बच्चा जो जिस तरह से माय वर्दी जितने भी हमारे बैठे हुए हैं उन्होंने यही बोला है कि बच्चे के वी हैव टू सी विच इज द बेस्ट थिंग आउट ऑफ दैट. नाउ मल्टीपल इंटेलिजेंस से मेरा ये तात्पर्य है कहने का कि देखिए, एक बच्चा जो क्लास में है मे नॉट बी अ वेरी गुड स्पीकर बट वेरी गुड राइटर, मे नॉट बी ऑलवेज अ स्माइली चाइल्ड बट येस ही हैज़ समथिंग टू शो. अब ये ओनस जो होता है नॉट जस्ट द टीचर बट येस सिंस द टीचर इज टेकिंग द रोल ऑफ अ फॉस्टर पेरेंट, जब बच्चा आता है इन द स्कूल इज नॉट होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तो नहीं कह सकते हैं, येस, बट देन येस ओनस इज ऑलवेज ऑन द टीचर हाउ टू सी दीज हिडन टैलेंट्स. उसके लिए एक तरह के आई वुड से एक ट्रायल एंड एरर मेथड हमारा एक बन जाता है, वेयर इज वी इंटरैक्ट विद द चाइल्ड एंड वी सी वॉट ही इज गुड एट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी स्ट्रैटेजी है दैट इज 4 पॉजिटिव्स अगेंस्ट 1 नेगेटिव. हम लोग हमेशा बच्चे में ये देखते हैं कि देखिए ये बच्चा ये नहीं कर सकता, नहीं, वाई डू वी यूज द वर्ड नॉट, हम उसको रिबाउंड करके लेके आ सकते हैं
क्या कर सकता है,
क्या कर सकता है. अगर मेरी क्लास में एक 25 बच्चों में से अगर 5 बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द फर्स्ट 20, आई एम मोर बॉदर्ड अबाउट द रेस्ट 5. तो उसमें से हर एक बच्चे का लर्निंग जो जर्नी होती है, हर एक बच्चे की डिफरेंट लर्निंग जर्नी होती है. कोई जैसे बताया म्यूजिक के साथ, कई बच्चे ऐसे हैं कि म्यूजिक बजे आसपास शोर हो तभी हम लर्न कर सकते हैं. समबडी वांट्स अ पिन ड्रॉप साइलेंस. एंड देन मल्टीपल इंटेलिजेंसेज हमने देखना है कि व्हाट इज द विच इज द एरिया इन विच द चाइल्ड इज सो इंटेलिजेंट कि हम और आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते.
जी जी.
और ये मल्टीपल इंटेलिजेंस है मेरा, अगेन आई वुड स्टिल लाइक टू हैव अपॉन द पॉइंट ऑफ माय पोयम दैट यस देयर दीज आर मल्टीपल इंटेलिजेंस इक्वल टू रेनबो. और ये थ्योरी जो है पहले की ये पास्ट नहीं है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन नाउ.
जी जी.
वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम आर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड व्हेन वी गो वी ऑलवेज कीप ऑन एडिंग सर्टेन थिंग्स बट वी नेवर फॉरगेट दैट. बच्चा जो आता है एक ही तरह से आता है, लेकिन हमारा उन्हें समझने का तरीका जो है वो डिफरेंट एरिया से कनेक्ट होना चाहिए. जब तक हम ये कनेक्शन बच्चे के साथ नहीं कर पाते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू टेक आउट द हिडन टैलेंट एंड देन नर्चर इट, मोटिवेट इट, प्रेज इट एंड देन सी हाउ ही इमर्जेस एज अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल गिविंग द सपोर्ट ऑफ दैट लेटेंट क्वालिटी दैट वी सी इन.
जी, बच्चों में बहुत सी खासियत होती है, जैसे एकविंदर सिंह जी ने कहा है कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ अलग होता है, तो हम उनकी कमियों से ज्यादा वो जो काम कर सकते हैं उसको ज्यादा फोकस करें. अब बचपन की बात अगर की जाए तो मुझसे भी बहुत सारे टीचर्स को शिकायत होती थी कि मैं बहुत बातें करती हूँ, तो मैंने बातों को ही अपना प्रोफेशन बना लिया है. तो ऐसे बच्चों में बहुत सारे टैलेंट होते हैं, तो क्यों ना उन्हें बड़े होते होते उस टैलेंट के बारे में ही उन्हें बताया जाए और उसे थोड़ा सा पॉलिश किया जाए. कविता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब आप एक टीचर हैं और आपने कहा कि आपको बहुत अच्छा लगता है, घर से टेंशन भी हो किसी चीज की तो स्कूल में पहुंच के, क्लासरूम में पहुंच के वो सारी टेंशन गायब हो जाती है जब 20-25 मुस्कुराते हुए बच्चे आपको दिखाई देते हैं।
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दीक्षा, और मैं आपकी प्रेज करना चाहूंगी कि आपने उस बोलने की कला को ही अपना प्रोफेशन बनाकर सच में बहुत अच्छा किया, और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं का बहुत भला किया आपने। आपकी आवाज सच में बहुत मधुर है और एकदम दिल के अंदर जाती है
जी। तो कविता जी, अभी मेरा टैलेंट तो मुझे पता चल गया, मेरे पेरेंट्स को भी पता चल गया, लेकिन आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें पेरेंट्स को अक्सर शिकायत रहती है कि इनमें कोई टैलेंट नहीं है, ये पढ़ नहीं रहा है, ये ना गाना अच्छा गा रहा है, ना ये डांस अच्छा कर रहा है, ना स्पोर्ट्स में एक्टिव है, ये कुछ नहीं करता, ये बस टीवी देखता रहता है, ये बस कंप्यूटर में लगा रहता है, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छाई आप कैसे ढूंढ सकते हैं?
दीक्षा, बात यही, जब हमारी क्लास में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ के दौरान अगर कुछ ड्रामेटाइज करना है, या कुछ सिंपल एक छोटी सी कविता गानी है, या कहीं कोई डांस का स्टेप करना है, या कुछ एक्ट करके दिखाना है, तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे जो अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स कुछ नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में वही बच्चे ज़्यादा उभर के सामने आते हैं
जी।
जब विभिन्न गतिविधियों के दौरान या हमारी असेंबलीज होती हैं उनके दौरान जो बच्चे, मुझे लगता है, क्लास में बिल्कुल चुप रहेंगे, हमें क्लास में उनकी एग्जिस्टेंस का भी नहीं पता होता है, बहुत अच्छा काम करेंगे, अपना काम समय पर पूरा करेंगे, लेकिन जब इन स्टेज पर या क्लास में ही कुछ भी कराते हुए अगर उन्हें कुछ दो लाइन बोलने के लिए दी जाएं, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अच्छा, मुझे नहीं पता कि इतना हीरा मेरी क्लास में छुपा हुआ है। या जब अभी मैं पिछले कुछ टाइम की बात बताऊंगी, मुझे एक नुक्कड़ नाटक कराने का मौका मिला, और वो बच्चे जिन्हें मैं शायद ऐसा मुझे ये लगता था कि हाँ, ये बच्चे आगे आने चाहिए क्योंकि क्लास में चुप रहते हैं ये, उन्होंने इतनी धुएंधार एक्टिंग की है कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि कितना अच्छा ये एक मौका मिला या अवसर मिला मुझे और अपने बच्चों को पहचानने का
जी।
मुझे लगता है कि क्लास में पढ़ाते हुए या उनसे बात करते हुए एक छोटी सी दृष्टि अगर एक हमारे अंदर वो है, तो मुझे लगता है हम बच्चे की किसी भी प्रतिभा को पहचान सकते हैं। कभी बात करते हुए पता चल जाता है कि ये बच्चा अगर इतना मीठा बोल रहा है तो इसकी आवाज बहुत अच्छी होगी
जी, जी।
तो लग जाता है पता कि ये गाना बहुत अच्छा गा सकता है
जी, जी।
तो इस अवसर पर ऐसा लगता है कि चाहे वो हम अपनी तरफ से एफर्ट्स करके उस बच्चे को मोटिवेट करके म्यूजिक टीचर्स तक ये वाली बात चाहें कि आने वाली गतिविधियों में या डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उस बच्चे को उसके उस टैलेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मुझे लगता है एक छोटा सा नज़रिया हमारा अगर हो कि अपने ही बच्चों की तरह उनकी उन प्रतिभाओं को पहचानना है
जी जी।
तो फ़ायदेमंद है बहुत।
यानी पार की नज़र चाहिए, एक टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, आपको बस देखना ये है कि आपका बच्चा कहाँ पर अच्छा है।
पार की नज़र के साथ साथ अगर मैं एज अ पेरेंट बात करूँ तो थोड़ा सा बड़ा दिल होना चाहिए। मेरा बड़ा बेटा, वो 11th क्लास में पढ़ता है, बहुत अच्छा है पढ़ने में, लेकिन उसको गिटार बजाने का बहुत शौक है, बहुत, ही इज़ मोर इन टू म्यूज़िक। तो जब तक वो एक गिटार नहीं बजाएगा, कुछ गाएगा नहीं, तो मुझे लगता है उससे पढ़ा नहीं जाता है
जी, जी।
तो मुझे लगता है कि अगर वो पढ़ लेता है अच्छा, या अपना सारा काम समय पर कर लेता है, तो वो एक या डेढ़ घंटा उसका अगर वो वहां लग भी रहा है, तो मुझे सच में एज अ पेरेंट मैं बताऊंगी कि मुझे बिल्कुल नहीं दुखता है वो
जी, जी।
मुझे लगता है आगे आने वाले 6 घंटे जो उसने पढ़ाई करनी है, 4 घंटे उसने पढ़ाई करनी है, ये 1 घंटा उसको मोटिवेशन देगा, तो रियली मैं उसको सब करने देती हूँ आराम से।
बिल्कुल, यानी अगर वो 1 घंटा गिटार बजाकर बाकी सारे काम अच्छे से कर लेता है
बिल्कुल,
तो गिटार बजाने में कोई दिक्कत नहीं है, और कल को अगर वो गिटार को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहे तो उसमें भी काफी नाम है।
बिल्कुल है, बिल्कुल है, और एज अ पेरेंट मुझे कहने में बिल्कुल कभी कोई दिक्कत नहीं होगी कि मेरा बेटा जो है म्यूजिशियन है या वो गिटारिस्ट है।
क्या बात है, मतलब बहुत सारे खास व्यूज हमारे पास आ रहे हैं। और लीना जी, आपसे जानना चाहूंगी,
मैं कविता मैम की बात से सहमत हूँ बहुत, और उन्हीं की बात को और आगे बढ़ाना चाहूँगी कि मानव रचना में मुझे 7-8 साल हो चुके हैं काम करते हुए, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ टीचर इन मानव रचना। क्योंकि अगर बात की जाए बच्चे के अंदर जो हिडन टैलेंट की बात कर रहे हैं, तो एक टीचर, मानव रचना की जो टीचर्स हैं, उनको एक एक बच्चे के बारे में अपनी क्लास में अगर 25-30 की स्ट्रेंथ है, वी एज टीचर्स नो ईच चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एंड वी ट्राई टू वर्क ऑन इंडिविजुअल बेसिस। सो आई एम वेरी प्राउड, एंड आई थिंक मैम एवरी टाइम लाइक इन आर स्कूल वी गिव सच अपॉर्चुनिटीज टू आर चिल्ड्रन ऑल्सो, लाइक उनको रोबोटिक्स दिया जाता है, हमारी असेंबलीज होती हैं जिनमें उनको एवरी टाइम 100% पार्टिसिपेशन देयर। आई थिंक बहुत स्कूल्स हैं जो जिसमें 100% पार्टिसिपेशन नहीं होती है। हमारे स्कूल में वो अपॉर्चुनिटी बच्चे को दी जाती है ताकि उनका हिडन टैलेंट हमारे सामने निकल के आए
जी। ज्योति जी, आपसे जानना चाहूंगी बच्चे के हिडन टैलेंट को कैसे ढूंढा जाए, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं तो बहुत सारे व्यूज हमारे पास आए हैं। कोई कह रहा है कि क्लास में बहुत ज्यादा ध्यान दें और बच्चों की बारीकियों पर ध्यान दें तो काफी कुछ पता चल सकता है, आप क्या कहना चाहेंगी?
मैं ये बोलती हूँ, जो बच्चे बहुत शाय नेचर के होते हैं और क्लास में कुछ परफॉर्म नहीं करते हैं और रेगुलर पूछने के बावजूद भी कुछ नहीं करते हैं, तो मेरी ये हिट एंड ट्रायल वर्ड तो मैं नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन मैं फिर भी ये करूँगी कि रेगुलर बेसिस पे उनको कुछ ना कुछ परफॉर्म, जैसे कॉन्फिडेंस वो लूज़ कर जाते हैं लेकिन उनको रेगुलर एक्सटेम्परीज जैसे दी जाएँ और रेगुलर बेसिस पे उनको स्टेज पे बोलने का मौका दिया जाए। कोई बात नहीं, एक बार नहीं बोलेंगे, दो बार नहीं बोलेंगे, तीन बार कभी ना कभी तो बोलेंगे, ठीक है, नहीं बोलते कोई बात नहीं, उनको आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग क्लासेस या कुछ और पार्टिसिपेट किसी ना किसी चीज़ में उनको जरूर दे, कहीं ना कभी तो बोलेंगे, फिर देखो वो कहाँ बेस्ट है और उसी टैलेंट को आगे तक लेके जाया जाए
जी।
और धोनी भी कोई पहले क्रिकेट प्लेयर नहीं थे, वो फुटबॉल में, हाँ ये था कि स्पोर्ट्स में है, पर उनके पेरेंट्स ने उसी टैलेंट को आगे तक लेके गए तो वो एज अ क्रिकेट प्लेयर बने। मतलब ये है कि किसी टैलेंट को पहचानना, पेरेंट्स और टीचर्स आगे तक लेकर आते हैं, उसी टैलेंट को आगे तक लेके जाओ, यही मेरा कहना है।
बिल्कुल, यानी बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराते रहे ताकि पता चलता रहे कि बच्चा क्या करना चाहता है। रेडियो मानव रचना 107.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और आप हैं मेरे साथ यानी दीक्षा के साथ। बहुत सी बातें चल रही हैं फिलहाल कि आखिर बच्चों के छुपे हुए टैलेंट को कैसे पहचाना जाए, और अब मैं जानना चाहूंगी इकविंदर सिंह जी से। इकविंदर सिंह जी, बच्चों का टैलेंट छुपा हुआ होता है, टीचर्स की बात हमने कर ली कि स्कूल में कैसे आप पहचान सकते हैं, टीचर्स क्या कोशिश करती हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है जिनका बच्चा है, और आजकल का टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा है जहाँ पर पेरेंट्स के पास घर पे बिताने को वक्त नहीं है, शाम को आते हैं थके हारे, थोड़ा बहुत बच्चे के साथ बैठेंगे, फिर अपनी एक्टिविटीज़ में अपने लैपटॉप पे फिर बिजी हो जाते हैं और अगले दिन सुबह 8 बजे फिर चले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा जो होता है वो दादा दादी के पास रहता है या मेड के पास रहता है, तो बच्चे का टैलेंट समझने के लिए, उसे देखने के लिए वक्त ही नहीं होता।
देखिए दीक्षा, ये सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात बताना चाहती हूँ कि एक बच्चे का जो ग्रोथ होती है, हिज फिजिकल हिज मेंटल हिज साइकोलॉजिकल ग्रोथ जो होती है, वो सभी के सामने, इट्स लाइक अ वेरी ओपन बुक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सी एज एंड व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोइंग, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वुडंट से, एक जो जैसे कविता ने बहुत ठीक तरह से बोला, एक वर्ड यूज़ किया दृष्टिकोण, वो हमारी दृष्टि शुरू से ही एक बन जानी चाहिए कि हम बच्चे को किस तरह से, किस नज़रिए से देखते हैं। इसमें एक फॉर्मेटिव इनपुट्स होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम एज इन द चाइल्ड ग्रोज। अब वो जो हम फॉर्मेटिव इनपुट्स देखते हैं, वी हैव टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ द चाइल्ड इज ग्रोइंग, हाउ इज बींग नर्चर्ड, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट्स अ जॉइंट फैमिली, आई वुड ऑलवेज गिव फुल मार्क्स टू अ जॉइंट फैमिली, बिकॉज एक बच्चा जो है इतने सारे लोगों के बीच में पनप रहा है। देखिए हम मीडिया की बात करते हैं, एक मीडिया तो उसको वैसे ही मिल गया जब बच्चा एक जॉइंट फैमिली में
जी,
ही इज एक्सपोज टू सो मेनी लेवल्स ऑफ थिंकिंग, बी इट हिज पेरेंट्स, बी इट हिज ग्रैंड पेरेंट्स, बी इट इवन अ मेड हु इज लुकिंग आफ्टर हिम और हर। अब जहाँ तक सवाल आपका टाइम का है, येस द पेरेंट्स नीड टू बी सेंसिटाइज टूवर्ड्स इट, दैट ऑल दे कैन गिव इज नॉट जस्ट मनी एंड नॉट जस्ट बिग ह्यूज थिंग्स, बट द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन टुडेज लाइफ इज द टाइम। जब सबसे उन्होंने एक उत्तरदायित्व ले लिया है कि एक बच्चा एक लाइफ को इस दुनिया में लेकर के आना है, और जब उन्होंने सोच लिया है, उसके बाद में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लाइफ को जन्म देने तक नहीं सीमित होती है, उसके बाद में जब एक बच्चा बड़ा होता है, पनपता है, दे नीड टू बी गिविंग द इनपुट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट इज़ नॉट दैट कि यहाँ अब तक 1.5 साल का हो गया, ओके नाउ गो टू स्कूल, बिकॉज वी डोंट हैव द टाइम। येस वी आर अर्निंग फॉर आर पेरेंट्स, वी आर अर्निंग फॉर आर चिल्ड्रन, सॉरी, बट आर द चिल्ड्रन ऑल्सो थिंकिंग कि हम ये टाइम जो है हमारा वापस नहीं आएगा, एंड खुदा नखास्ता वही बच्चा जब बड़ा होकर के पेरेंट्स को बाद में बोलेगा कि मामा पापा यू ओनली गेव मी मनी और मटीरियल थिंग्स, वेयर वर यू टू गिव मी अ शाबाश एट माई बैक जब मैं एक स्कूल से एक गुड लेकर के या एक प्रॉपर इंसेंटिव लेकर के आता था, आप कहाँ थे?
बिल्कुल।
सो उस समय जो जवाब पेरेंट्स को देना पड़ता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो इस तरह का जो सपोर्ट सिस्टम है, इट इज़ एन ऑल राउंड सपोर्ट सिस्टम, नॉट जस्ट लिमिटेड टू द पेरेंट्स, बट येस द ग्रैंड पेरेंट्स, एंड देयर आफ्टर वैल्यूज जो हैं हम ग्रैंड पेरेंट्स से सीखते हैं। कमिंग टू द स्कूल इट्स अ ट्रांजिशन, and it is up to us how smooth we make the transition and from there how much support, I would say a life support, जो हम बच्चे को देते हैं।
कविता जी क्या कहना चाहेंगी? मैं चाहूंगी कि आप वो बताएं जो आपका अपना एक्सपीरियंस है कि आप एक एज अ मदर कितना वक्त देती हैं अपने बच्चे को।
एज अ मदर स्कूल से जाने के बाद, क्योंकि हम तीनों ही, मेरे दोनों बेटे और मैं, एक ही टाइम पे हम आते हैं घर में, तो हम तीनों के पास ही एक दूसरे के लिए काफ़ी टाइम है
जी।
मुझे लगता है दो भाई भी हो या भाई बहन हो तो वो आपस में भी एक दूसरे को काफ़ी टाइम देते हैं, तो उससे लर्निंग भी है दोनों की। तो उससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा ये है जब हम तीनों एक साथ हैं, चाहे वो हम पढ़ रहे हैं या खाना खा रहे हैं, उसके बाद दोनों अपना अपना पढ़ रहे हैं, मैं घर पर हूँ उन्हें देखने के लिए। थैंकफुली मैं टीचर हूँ, स्कूल में हूँ, तो मुझे लगता है बच्चों के साथ पहुँच जाने से काफ़ी टाइम मैं शाम तक उनको दे पाती हूँ, या उन्हें कोई भी ज़रूरत है या अपनी हर मुसीबत के समय या मुश्किल के समय वो मुझे अपने सामने खड़ा पाते हैं, इस बात की मुझे सच में बहुत तसल्ली है और एज अ मदर मुझे बहुत खुशी है। कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट हम सबको जब हम अपने आप को जज करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मैं उतना नहीं कर पा रही हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। तो ये एक ऐसी सोच है जो मुझे हर दिन कुछ और ज्यादा करने के लिए प्रेरित करती है
जी जी।
तो मैं अपनी इसी सोच को बरकरार रखती हूँ और मैं साथ साथ अपनी पॉजिटिविटीज को भी देखती हूँ कि मैं उतना कर रही हूँ जितना मैं करना चाहती हूँ। तो दोनों ही चीजों को बराबर रखते हुए समय और उनकी और गतिविधियों के बीच संतुलन बनाते हुए उनके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है और शायद मैं उन्हें पूरा समय दे पाती हूँ
जी। लीना जी आप क्या कहेंगी, कितना वक्त पेरेंट्स को देना चाहिए अपने बच्चों को डेली बेसिस पर?
वक्त की बात करें तो आजकल के ज़माने में पेरेंट्स के पास इतना वक्त नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए, लेकिन वक्त जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप एज अ पेरेंट आपको बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना। अगर आप वक्त नहीं दे रहे हैं तो आप भी बच्चों से जो आप वैल्यूज़ जो आपके अंदर हैं, जो आप अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अगर आप वक्त नहीं देंगे तो वो बच्चे कहाँ से कुछ सीखेंगे। तो आपको वक्त देना बहुत ज़रूरी है
जी। रेनू जी आपसे जानना चाहूँगी, इतना बिजी शेड्यूल है पेरेंट्स का जहाँ पर बात करने का वक्त नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में टैलेंट को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि दिन में अगर आप आधा घंटा भी एक घंटा भी अपने बच्चे के साथ बिता रहे हो तो आप उसकी डेली एक्टिविटीज़ पूछोगे, लेकिन क्या आपके पास इतना वक्त है कि आप जान सको कि बच्चा करना क्या चाहता है, उसमें टैलेंट क्या है?
मैं एक्चुअली इसके लिए एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी अबाउट माई सन। एक्चुअली क्या था कि मुझे लगता था कि जैसे उसके फ्रेंड्स हैं, दे आर डूइंग डांस एक्टिविटीज़, ड्राइंग एंड दिस टाइप ऑफ थिंग, तो मुझे लगता था गो टू द डांस क्लास। तो वो गया लाइक 5-10 days ही वॉज इन द डांस क्लास। तो डांस क्लास में क्या हुआ, डेली ही वॉज कंप्लेनिंग ऑफ स्टमक एक। सो आई आस्क्ड हिम कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कि जब भी तुम क्लास में आते हो तो तुम्हें स्टमक एक होता है। देन मुझे पता चला कि वहाँ पे उसकी जो वार्म अप एक्सरसाइजेस करते थे ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज दैट वॉज वेरी टफ, और वो डांस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो मुझे लगा कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप एक्चुअली कई और एक्टिविटीज, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि यू शुड बी एक्टिव द होल डे। सो उसके बाद उसने फुटबॉल क्लासेस ज्वाइन किया, तो उसके बाद मुझे लगा कि फुटबॉल क्लासेस के बाद कि ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। तो मुझे टैलेंट जानने में इट टू फ्यू टाइम, बट ठीक है, लेकिन अब नाउ ही इज ऑन द राइट ट्रैक, ही इज इन द स्पोर्ट्स फील्ड। सो दैट वॉज माई प्रॉब्लम अबाउट माई सन, सो नाउ इट हैज सॉल्व। सो अब मुझे सेटिस्फैक्शन है कि ही इज गोइंग ऑन द राइट पाथ।
यानी कि थोड़ा सा वक्त लग जाता है इस चीज को चेक करने में कि आपका बच्चा एक्चुअली में किस चीज में अच्छा है। ज्योति जी आपसे जानना चाहूंगी, आप पेरेंट्स की जिम्मेदारी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी आपने बोला था कि वक्त ही नहीं है पेरेंट्स के पास, तो टैलेंट कैसे पहचानेंगे जब बात ही नहीं कर पा रहे, तो क्या कहना चाहेंगी पेरेंट्स के लिए, कोई टिप ऐसी जिससे वो ये जान सकें जो आपको सुन रहे हैं फिलहाल कि हाँ हमारा बच्चा हमारा है और उसके टैलेंट को समझने की जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल की नहीं है, हमारी भी है।
पेरेंट्स की अगर बच्चे को चाहते हैं इमोशनल बॉन्डिंग हो और सोशल इंटरेक्शन अच्छी रहे और बच्चा अपने पाथ से बिगड़े ना, तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी एंड इट इज़ अ मैसेज टू द पेरेंट्स ऑल्सो कि प्लीज़ एटलीस्ट एक घंटा, चाहे आप कितने भी बिजी हों कितने भी बिजी हों, एक घंटा मदर भी और एक घंटा फादर भी। ब्रांड से कुछ नहीं होने वाला, और आप कितना भी कमा के ला दो और लास्ट में जब आपका बच्चा ये कहेगा सॉरी मॉम आई डोंट हैव अ टाइम फॉर यू, आपके वो पैसे एक तरफ और आपका वो जो वक्त एक तरफ, जो ना दिया हो वक्त, आप लिटरली रोगे उस बात के लिए। तो आई एम रियली हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, दोज हू आर नॉट गिविंग दैट वैल्यूएबल टाइम टू योर किड्स, सो प्लीज़ गिव योर टाइम। वो इमोशनल बॉन्डिंग एंड सोशल बॉन्डिंग, इट्स वेरी वेरी असेंशियल फॉर योर किड्स, काइंडली गिव द वैल्यू ऑफ टाइम। और मैं सच बात ये बोलती हूँ कि जो कहते हैं बच्चे मेरे स्कूल में, जो बच्चे कहते हैं मैम पता है आप मुझे क्यों अच्छे लगते हो या यहाँ के स्कूल के टीचर्स मुझे, क्योंकि वो हमें बहुत हग करते हैं, बहुत किसी करते हैं। मम्मा आती हैं मॉर्निंग में आती हैं, बस वो किसी करते हैं, रात को आती थोड़ी छोटी सी मुझे ललबाइज बोलते हैं तो बेबी प्लीज़ मैं भी बहुत टायर्ड हूँ, आप सो जाओ मैं भी सो जाती हूँ। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि वैल्यूएबल टाइम्स दो, सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं, अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ ही इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर द फर्दर और फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट।
बिल्कुल, जैसा कि ज्योति जी ने कहा है कि बच्चों को टाइम ज़रूर दें, आप उनका टैलेंट पहचानेंगे भी तभी और उनके साथ मिक्सअप भी तभी हो पाएंगे, और बच्चा अपने टैलेंट के बारे में आपको तभी बता पाएगा जब आपके पास वक्त होगा उसके साथ बिताने के लिए कि उसे क्या अच्छा लगता है। तो फिलहाल लीना जी आप बीच में कुछ कहना चाह रही हैं, बहुत देर से मैं जानना चाहूँगी क्या कहना चाह रही हैं।
नहीं, जैसे कि ज्योति जी ने कहा कि पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए, आई ऑल्सो एग्री विद इट, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हमें एक घंटा कुछ स्पेसिफिक टाइम रखना चाहिए बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, चाहे थोड़ी देर भी हो बट वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए बच्चों के साथ। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन या बच्चों के साथ कुछ नॉलेजेबल कुछ आप उनके साथ अच्छा शेयर कर सको, उनके साथ थोड़े टाइम भी क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सको, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि एक घंटा फिक्स करके हम उसको स्पेंड करें।
जी जी,
और चाहे हम उस बीच में बच्चे को कुछ सिखा नहीं रहे हैं, चाहे हम कुछ उसमें इनकलकेट नहीं करना चाह रहे हैं, छोटी सी सिंपल सी एक्टिविटी वो जो हमारे साथ करना चाहता हो, या वो कुछ डिस्कस करना चाहता है, या वो अपनी क्लास के बारे में बताना चाहता है, कोई एक ऐसा खेल जो हमारे साथ खेलना चाहता है,
मतलब कुछ भी, लेकिन
कुछ भी ऐसा
अपने बच्चे के साथ बैठे सही डेली बेसिस पर और उसके साथ बातें करें, इंटरेक्शन करें, चाहे कुछ भी।
बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा,
जस्ट वो बच्चा सिर्फ ये बताना चाहता हो कि मम्मा मेरे स्कूल में मेरी टीचर ने या मेरे साथ मेरे बच्चे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये बताया, सिर्फ वो इतना ही इन्फॉर्म करना चाहता है या वो अपने दिल की बात बताना चाहता है। वही बच्चा बताना चाहता है जिसमें माँ या फादर या मदर ये बोलते थे नहीं बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, उसमें उसको फ्रस्ट्रेशन और एग्रेसिवनेस बच्चे में आ जाती है। दैट चाइल्ड स्टार्टेड फाइटिंग, उसमें एग्रेसिवनेस कहाँ से आती है, वो इतना गुस्सा कहाँ से आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। हम कहते हैं ना बच्चे आजकल कितने एजिटेटेड हो गए हैं, कितने एग्रेसिव हो गए हैं, व्हाई दे स्टार्टेड, हम कहते हैं कि क्यों बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि वो एक तो जंक फूड्स, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, इतने जंक फूड्स खिला रहे हैं। ओके बेबी हैव समथिंग वट एवर यू फील लाइक, व्हाई दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली पॉइंट।
जी
या
यानी बच्चे को वक्त दें, उसका ख्याल रखें और उसके साथ समय बिताएं ताकि बच्चा आपसे अपने दिल की बात कह पाए और फिर आप उसका टैलेंट समझ पाए। बातें चल रही है फिलहाल बच्चों के टैलेंट के बारे में, छुपी हुई प्रतिभा किस तरीके से निखारी जा सकती है। छोटे छोटे बच्चों में बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि बाहर लाना बेहद जरूरी होता है, लेकिन कैसे, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, टीचर्स की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे की भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि वो अपने मन की बात बताए कि आखिर उसे अच्छा क्या लगता है। एकविंदर जी आपसे जानना चाहूंगी क्या कहना चाहेंगी बच्चे की सोच के बारे में कि बच्चा कैसे बताए।
एक तरह का कनेक्शन जो मैंने आपसे पहले भी बताया था बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक जुड़कर रहना बच्चे के साथ, उसकी भावनाओं को समझना, कभी कभी बच्चा बन जाना, एंड इवन समटाइम्स इवन इफ यू हैव टू गो ऑन योर फोर्स डू इट इन ऑर्डर टू बी विद अ चाइल्ड, यस बिकम अ चाइल्ड विद अ चाइल्ड।
जी,
तभी एक तरह का एक कनेक्शन आएगा, उसको आप धीरे धीरे ऊपर लेकर के आएंगी, उसके साथ फ्रेंड्स बनेंगे, एक कनेक्शन होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगी, रीजन आउट होंगे। अगर उसको एक सचिन तेंदुलकर पसंद है शायद आपको ना पसंद आए, एक तरह का आर्ग्यूमेंटेशन आगे रीजनिंग आउट, बच्चे को बुलाइए, कम्युनिकेशन एंड दैट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द फिलोसफी दैट मानव रचना इंस्टीट्यूशन बिलीव्स इन। वी बिलीव इन एक प्लेग्राउंड है ऑफ एजुकेशन वेर इन बच्चे खेलते हैं और किसी भी कोने में खेलते हैं, कैसे भी खेलते हैं, हमने देखना है उनके साथ बच्चा बन के उनके साथ खेलना है और इसी खेल में हमने एक लर्निंग प्रोसेस जारी करना है। I feel it's a wonderful philosophy and I can say very authentically that we are being praised for this, and जो बच्चे आकर के छोटा बच्चा कहता है मैम आपको क्लास नहीं मालूम कि कौन सी क्लास कहाँ पर है, I have to tell that child कि बेटा I am as new as you are। सो अगर एक बच्चा मुझे ऐसे कहता है आई वुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट एंड आई वुड टेल हिम कि यस लेट्स गो एंड फाइंड द क्लास टुगेदर। सो व्हेन वी आर टेकिंग अ कॉमन गोल यू मी एंड द चाइल्ड हैव टू गो एंड फाइंड दैट गोल।
जी बिल्कुल, कविता जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो करना कुछ चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा दबाव रहता है उन पर कि नहीं आप ये कीजिए, पेरेंट्स का दबाव होता है, वो करवाना चाहते हैं अपने बच्चे से जो वो नहीं कर पाए, तो यहाँ पर बच्चे का टैलेंट थोड़ा सा दब जाता है। जैसे कि अगर आपने कहा कि आपका बेटा गिटार बहुत अच्छा बजाता है और उसे वो गिटार बजाकर बहुत अच्छा फील होता है, तो कहीं आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता कि नहीं नहीं ये गिटार प्रोफेशन नहीं बन सकता? तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि ये तो शौक है और ये हॉबी है, इसको साइड पे रखें लेकिन पढ़ाई कीजिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चा क्या करे?
दीक्षा, ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए पेरेंट्स, एज अ पेरेंट मैं सब पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि हमें अपना दिल सच में थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा अपने बच्चों की खुशी के लिए। मोरओवर, हमारी पेरेंटिंग किस पर डिपेंड कर रही है? बच्चों की खुशी के लिए। चाहे हम सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, अपने बच्चों की खुशी के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे बच्चे की खुशी उस गिटार बजाने में है या म्यूजिशियन बनने में है, तो वो मेरी खुशी क्यों नहीं बन सकती है? मेरी खुशी सिर्फ वो यही क्यों है कि वो साइंस लेके इंजीनियर ही बने या मेडिकल लेके वो डॉक्टर ही बने? मेरी खुशी ऐसी उसमें क्यों नहीं है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जो वो करना चाहता है, अपने जिस शौक को, जिस हॉबी को वो अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है, वो क्यों ना करे? क्या मैं इतना बड़ा दिल नहीं रख सकती हूँ एज अ पेरेंट? तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि हम पेरेंट्स को आज के ज़माने को देखते हुए या अपने बच्चों की खुशी देखते हुए, हमारा अल्टीमेट गोल हमारे बच्चों की खुशी है, तो अगर हम सिर्फ उस गोल पे फोकस करें तो मुझे लगता है कि बच्चे जो करना चाहें अपनी गाइडेंस में सही तरीके से उनको गाइड करते हुए वो करने देना चाहिए।
जी, यानी बच्चे जो करना चाहें वो करने दें, उनको जो उनका टैलेंट है उसे निखार कर उनका प्रोफेशन भी बनाने में मदद की जा सकती है। लीना जी, आप क्या कहना चाहेंगी?
एक पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बच्चा आपसे कुछ, आप जैसे कह रहे हैं कि कम्युनिकेट करें, तो वो कम्युनिकेट कब करेगा? जब हम उनको वैसा एनवायरनमेंट देंगे। और आई थिंक हमारे मानव रचना में हम एज टीचर्स हम वो बच्चों को एनवायरनमेंट देते हैं कि बच्चे अपने घर की पर्सनल बातें जो होती है पेरेंट्स के बीच में भी जो होती है वो भी हमें आके एज टीचर्स बताते हैं कि हम आज ऐसे हुआ, आज ऐसे हुआ। अगर कोई बच्चा कुछ बाहर कोई अवार्ड जीत के आया, उसने कहीं पार्टिसिपेट किया है, तो वो ट्रॉफी लेके आता है टू शो इट टू मैम कि मैम मैंने यहाँ पर ये ट्रॉफी जीती है। वो ये चीज़ तभी पॉसिबल है क्योंकि हम वो एक एनवायरनमेंट बच्चे को देते हैं कि वो हमसे फ्रीली वो बात कर सके, और बच्चे जो है वो हमसे आराम से खुले दिल से बात कर सकते हैं और हम उनको ऐसा एनवायरनमेंट भी देते हैं।
रेनू जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगी आप बच्चों के लिए एक छोटी सी टिप, ताकि वो किस तरीके से अपने टैलेंट को, जो छुपा हुआ टैलेंट है, जो उनको धीरे धीरे समझ आने लगा है कि हाँ मुझे यही शौक है, यही मेरा टैलेंट है, मुझे इसे ही आगे बढ़ाना है।
एक्चुअली एक विंदर मैम की बात पे मैं लाइक एग्री करती हूँ कि शी टोल्ड अस दैट एक बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। बॉन्डिंग के बिना बच्चा मदर या फादर से अटैच नहीं हो सकता। इफ़ देयर इज़ सम गैप, तो मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों के बीच में, अगर वो टैलेंट बताना चाहे या कुछ बताना चाहे बच्चे, तो दे कांट लाइक टॉक टू द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग, कविता मैम ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बड़े दिल वाला होना चाहिए, बिकॉज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एवरीबडी इज़ लाइक, मेरी बेटी तो इंजीनियर है, डॉक्टर है, अगर कभी उसने बोला कि एक्ट्रेस, आई वॉन्ट टू बी एन एक्ट्रेस, नो, दैट इज़ अ टैबू। सो दैट थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू लाइक आई एग्री विद दैम कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक बच्चे के टैलेंट को जानने के लिए, बिटवीन द बॉन्डिंग बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड।
यानी कि बच्चे के टैलेंट को जानिए और अगर वो उस टैलेंट को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो उसे अपने दिल से एक्सेप्ट कीजिए।
मैं ये कहना चाहूँगी कि सुनने में ऐसे आता है कि मीराबाई तो बहुत अच्छा है, मीराबाई पड़ोस के घर में होनी चाहिए, वो मीराबाई मेरे घर में नहीं होनी चाहिए।
ऐसा कहा जाता है ना कि भगत सिंह भी दूसरे के घर में होना चाहिए, अपने घर में नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद की तरह बनना चाहिए, दूरदर्शी, बहुत चिंतक, लेकिन वो विवेकानंद मेरे घर में नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों के लिए अप्रोचेबल रहें।
जी जी,
कि जहाँ बच्चा अप्रोच कर सके, चाहे वो एज अ टीचर मेरे पास आ रहा है तो उसको ये पता है कि कहीं ना कहीं शायद मैं उसको उसकी किसी समस्या को सुलझा पाऊंगी या उसकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगी, या अगर वो मेरा बच्चा है, एज अ पेरेंट उसको मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि अगर मैंने माँ को ये बात बताई है तो वो मेरे लिए कुछ कर पाएंगी। तो
जी जी,
टीचर और पेरेंट शुड बी अप्रोचेबल।
जी, टाइम बदल रहा है और इस बदलते हुए समय के साथ साथ दिमाग खोल कर जिएंगे तो अपने बच्चे के टैलेंट को समझ पाएंगे। लीना जी, आप क्या कहना चाहेंगे?
आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज अ पेरेंट इट इज़ कि आपको अपने बच्चे को इतना प्यार देना चाहिए कि वो आपसे आके सब बातें आपसे शेयर कर सके, वो इतना फ्री एनवायरनमेंट देना चाहिए उसको, और वो सारी दिल की बात आपसे आके कर सके, और आपको उस बच्चे को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे कि वो है, ना कि उसकी बार बार उसकी गलतियाँ उसको बता के कि आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे ये गलत कर रहे हो, बल्कि उसको ये बता के कि बेटा जो भी आप हो आप वो सही हो, आप वैसे ही उसको आगे बढ़ाइए।
जी ज्योति जी, अब चलते चलते आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगी बच्चों के लिए एक छोटी सी टिप कि वो अपने टैलेंट को निखारने में, उस टैलेंट को समझाने में पेरेंट्स को और टीचर्स को क्या करें?
अगर राइट टाइम पे बच्चा अपने पेरेंट्स को बता दे कि यस मैं मामा क्रिकेटर या एक पेंटर या एक अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, तो शायद पेरेंट्स और बच्चों की बॉन्डिंग अगर अच्छी हो तो शायद पेरेंट्स उसको, ठीक है पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई के साथ साथ उसी लाइन में उसी तरह से फोकस करते हुए उसको गाइडलाइन करते हुए उसी प्रतिभा को निखारेंगे और शायद उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे और उसको उसी प्रतिभा को निखारते हुए आगे तक ले जाएंगे। वही बॉन्डिंग की बात हो जाती है, प्रतिभा को पहचानते हुए आगे तक लेके, लेकिन गाइडेंस बच्चा उतना कैपेबल नहीं है कि वो अपनी प्रतिभा को खुद ही निखार ले, पेरेंट्स की गाइडेंस की जरूरत है। उसको उसी ट्रैक पर, जैसे थ्री इडियट्स में वो इंजीनियर बनाना चाहता था लेकिन वो लास्ट में पता चला नहीं वो तो अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहता है, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम एंड मनी वो राइट टाइम
को समझ के अगर वही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दे दे तो वो ज्यादा अच्छा
है, वो राइट टाइम पे राइट बात पता चल जाए तो वो गाइडेंस में काम कर लेगा। जी,
बच्चे की छुपी हुई प्रतिभा को समझने के लिए बच्चे को, माता पिता को और टीचर, इन सबको एक साथ मिलकर थोड़ा समय बिताना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि आखिर बच्चे में खूबियां क्या है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में खास होता है और उस खासियत को समझ सकते हैं आप। तो थोड़ा सा वक्त निकालिए और अपने बच्चे के साथ जरूर बिताइए, एज अ टीचर एज अ मदर जरूर अपने बच्चे के साथ वक्त बिताइए और साथ ही उसकी छुपी हुई प्रतिभाओं को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसकी ये प्रतिभा आपका और आपके परिवार का नाम एक दिन जरूर रोशन करेगी। बहुत सी बातें हमने करी हैं, एकविंदर जी, कविता जी, लीना जी, रेणु जी और ज्योति जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए।
थैंक यू।
तो फिलहाल हमने जाना कि बच्चे की छुपी हुई प्रतिभा को कैसे खोज कर बाहर निकालें। बहुत सी बातों के बाद वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।